Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो वो दे सकता है, लेकिन उससे कहो मेरी तुला विद्या नष्ट हो जावे। तुला विद्या नष्ट करने की क्षमता नहीं है। तुला विद्या, मूला विद्या नष्ट करने की क्षमता किसमें है? जिसमें अपने में ही खुद का प्रकाश है, वही मूला विद्या को नष्ट कर सकता है। चिंतामणि में तुम्हारी इच्छा को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन अंधकार में रखोगे तो वो अंधेरे में पड़ा रहेगा, रोशनी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जड़ है, उसमें प्रकाशता नहीं है, रोशनी नहीं है। तो एक छोटे से अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है, तो क्या मूला विद्या नष्ट करेगा चिंतामणि? कामधेनु गाय अंधकार में खड़ी है तो वहीं खड़ी रहेगी, अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकती है, तो मूला विद्या को क्या नष्ट करेगी? तुम तो प्रभु, और तुम्हारे बारे में तो हमने यही सुना है, तुम कोटि सूर्य प्रभा, आपके बारे में तो खुद आप में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, और वो रोशनी, वो प्रकाश आपका स्वरूप है, तो क्या आपके सामने मूला विद्या, तो क्या तुला विद्या, तो क्या मूला विद्या भी टिक नहीं सकता? फिर भी कारण क्या है कि आज तक तुला विद्या मूला विद्या दोनों ही अविद्या टिकी हुई है? तम तो प्रभो त्रिभुवनैकमय स्वरूपी पर्याप्त शक्तिरपि पूर्ण कृपारणवोपी। आप में तो पूर्ण कृपा का, आप तो पूर्ण कृपा का सागर हैं, ये भी शास्त्र कह रहे हैं एक स्वर से, गुरु आचार्य उपनिषद शास्त्र सब कहते हैं कि भगवान शिव परमात्मा कृपा के सागर हैं। और जब कृपा के सागर आप हैं, तो एक छींटा मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? बोलो, वह कृपा का सागर है, हमें सागर में डूबना नहीं है, आपकी कृपा का सागर, एक चिंगारी, एक छींटा भी हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मृत्यु से बचने के लिए अमृत एक लोटा चाहिए कि एक बूंद चाहिए? कितनी अमृत चाहिए बोलो? मृत्यु से बचने के लिए अमृत गिलास भर नहीं चाहिए, कितना चाहिए? एक बूंद भी ज्यादा है भैया, एक बूंद का भी सौवां हिस्सा हो ना तो भी काम चल जाएगा। हाँ, अमृत तो अमृत है, ज्यादा अमृत से ज्यादा जिंदा रहेगा, कम अमृत से कम जिंदा रहेगा, ऐसा है क्या? अमृत तो अमृत है, और अमृत के बारे में तो यह कहा गया है वो जिंदे को ही अमृत काम करता है कि मरे को भी? मरे का को, जो मरे हुए हैं उनमें भी काम करे तभी उसका नाम अमृत है। हाँ, जिंदो तो जिंदे ही है, उनको क्या अमृत की जरूरत है? मरे को भी काम करे। अमृत का महिमा तो यह है भाई, हमने तो कई बार सुना है, और इस शिवजी के बारे में एक कथा बहुत प्रसन्न है। अब आप लोग तो सब बूढ़े हो चुके हो, पढ़ नहीं सकते हो, एक किताब है 1,00,000 श्लोक का। कितने श्लोक का? उस किताब का नाम है सुभाषित रत्न भंडागार। सुवासित रत्न भंडागार, सुवासितों के रूपी रत्नों का खजाना, भंडागार माने खजाना, भंडार। ऐसे ऐसे विलक्षण श्लोक हैं, ऐसे सुवासित हैं। वहां एक प्रसंग आया है, एक समय की बात है, भगवान विष्णु, महाप्रलय हो चुका था और महाप्रलय हो जाने के बाद सारे समष्टि जीव परमात्मा में लीन हुए हुए थे। परमात्मा में लीन होने के कारण जगत नहीं था, जीव भी नहीं थे, क्योंकि कोई भी जीव नहीं था तो जगत किस लिए, सब प्रलय हो चुका था। तो विष्णु को पालन करने की ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी, कोई होता तब ना उसकी रक्षा करना था। देखो इस धरती में एक चींटी का भी प्रारब्ध बचा होगा ना, पूरी धरती को बनाए रखना पड़ता है उस चींटी के लिए भी, ये नियम है। ये धरती केवल तुम्हारे लिए नहीं बना है, एक चींटी भी इस धरती में जिंदी है तो उसी के लिए भी आकाश, वायु, तेज, जल, धरती सब व्यवस्था परमात्मा को करनी पड़ती है। हाँ, उसका प्रारब्ध समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक व्यवस्था करनी पड़ती है। और महाप्रलय तभी होता है किसी भी जीव का कोई भी प्रारब्ध बचा नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है, तब महाप्रलय करना पड़ता है। महाप्रलय हो चुका था इसीलिए किसी का पालन और संरक्षण करने की ड्यूटी काम भगवान विष्णु को नहीं था, इसलिए हॉलीडे वैकेशन। भगवान विष्णु का क्या चालू हो गया, वैकेशन चालू हो गया, हॉलीडे हो गया, छुट्टी फ्री। अब सबका संहार हो चुका था इसलिए भगवान शिव भी फुर्सत में थे। शिव थे कैलाश में, विष्णु थे वैकुंठ में। शिव जी ने विचार किया, देखो अपनी जो कला होती है, कला का हमेशा अभ्यास करे रहना पड़ता है। एक बार सीख लिया करके चुपचाप बैठने से वो कला फलीभूत नहीं होती है। महाप्रलय करते हैं भगवान शिव, तो प्रलय करने के लिए क्या करते हैं, तो तांडव नृत्य करते हैं। और जब वो तांडव नृत्य में लग जाते हैं दिगंबर होकर, तो फिर महाप्रलय हो जाता है, सारा सृष्टि खत्म हो जाता है। हाँ, तो प्रलय सृष्टि तो प्रलय तो हो चुका था, खत्म हो गया था, फिर भी दूसरे प्रलय के लिए अभ्यास करे रहना चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस बोलते हो ना। हाँ, इसीलिए नीतिकारों ने कहा अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या भी खुद पड़ी हुई विद्या भी नित्य निरंतर उसका अभ्यास करते रहोगे तो वो फलीभूत होगा, और अभ्यास छोड़ दोगे तो वो विष का जहर का काम करता है। अनभ्यास विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य है। किसी भी मीटिंग में कोई दरिद्र आवे तो एक गाठिया और जलेबी खाने न देवे, उस स्वभाव किस काम का। आज तो हमारे चुमन भाई के शरीर का हैप्पी बर्थडे टू ए चुमन भाई, जियो सत जियो, जुग जुग जियो भाई, जीवे म शरद असतम प्रभ्रवाम शरद, बिस्तरे में पड़ के नहीं जीना, चलते हुए जीना, 100 साल तक जियो और चलते हुए जियो। श्रृणुयाम शरद असतम, सत्संग सुनते हुए 100 साल तक जियो। अधीन श्याम शरद असतम, शास्त्र को पढ़ते हुए 100 साल तक जियो, ये हमारे वेद के वाक्य हैं। चिमन भाई का शरीर का आज जन्म जयंती है, चिमन भाई का नहीं है, उसका तो पैदा ही नहीं हुए है। चिमन भाई का शरीर पैदा हुआ, चिमन भाई पैदा नहीं हुए। हा, घट बनता है, घटाकाश नहीं बनता। शरीर पैदा होता है, शरीरी पैदा नहीं होता। तो आज सुबह हमारे चिमन भाई के शरीर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फाफड़ा और जलेबी, गाठिया जलेबी खाने को मिला था, है? तो प्रसंग क्या था? अनभ्यास विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। भोजन यदि ज्यादा खाया, वो पचा नहीं, तो वो जहर का काम करता है, वो जहर में परिणत हो जाएगा तुरंत। विषम सभा दरिद्रस्य, मीटिंग हो और ईटिंग ना हो तो वो सभा किस काम का? इसलिए एक महात्मा बोलते थे, पहले मीटिंग करो, उसके बाद ईटिंग करो, फिर चीटिंग करो। मीटिंग होता ही चीटिंग के लिए है? और संसार सब चीटिंग में चल रहा है, सारा मीटिंग ईटिंग और चीटिंग में चलता है। ईटिंग करो, चीटिंग करो, बस काम खत्म। और एक मीटिंग से पूरा नहीं हुआ तो फिर सेकंड सीटिंग करो, सीटिंग करो, दूसरा सीटिंग। तो कह रहे थे कि भगवान शिव अभ्यास कर रहे थे अपने महाप्रलय करने की विद्या का। भगवान विष्णु ने विचार किया कि फुर्सत में है, कैलाश जाएं, शिव जी से मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाएगी, कुशल क्षेम पूछ लेंगे, बहुत दिन हो गया है, हमारा भी काम नहीं है, शिव जी का भी काम नहीं है, जाते हैं शिव जी के यहां। गरुड़ में चढ़े और भगवान विष्णु पहुंच गए कैलाश, समझे नहीं? और कैलाश की जो शिव जी का अपना गुफा है, उसके बाहर गरुड़ को उतारा, गरुड़ को कहा कि तू दाना पानी चूमने जा, और भगवान शिवा अंदर जाने लगे तो नंदी ने रोक दिया कि आप जाना नहीं अंदर। बोले क्यों? बोले शिवजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, अपनी विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा भाई, जाकर कह दो वैकुंठ से विष्णु आए हैं दर्शन करने के लिए, कह सकते हो ना? बोले हाँ, ये बात तो मैं कह दूंगा। नंदी जाकर कह दिया कि भगवान, वैकुंठ से विष्णु भगवान आए हैं आपके दर्शन के लिए। अरे विष्णु आए हैं? फटाफट उन्होंने कपड़ा पहन लिया, उनके कपड़ा तो आपको पता ही है ना, दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे। हाथी की जो चमड़ी थी वो खूंटे में रखा था, फट से निकाला और कमर में लपेट ली। और क्योंकि कुछ सूखा हुआ को कपड़ा था, ज्यादा ही सूख गया था, कड़क था, एक सर्प उठा लिया और उसी से बांध दिया। आप लोग बेल्ट बांधते हो ना, हाँ, उन्होंने बांध दिया, कस के बांध दिया। और क्योंकि तांडव करते समय जटा खोलनी पड़ती है, नृत्य करते समय जटा खोला था, फिर उसको भी संभाल लिया, तो बांधना है, जटा बांध ली। तो आप लोग रबड़ से बांधते हो ना अपने केस, क्या बोलते हो उसको, रबड़ बैंड, चलो जो कुछ भी कहो। और जटा को बांधने के लिए भी एक सर्प उठाई, उसे बांध दिया, जटा भी बांध ली, कपड़े भी बांध दिया कमर में। अब विष्णु के पास जाना है तो थोड़ा सा भस्मी भूस्मी लगा ली, मेकअप कर ली और गए विष्णु बाहर। भगवान विष्णु पेड़ के नीचे बैठे थे, मयूर वहीं पेड़ के आसपास में है, गरुड़ गरुड़ मरुड़ नहीं, विष्णु का वाहन तो गरुड़ है, गरुड़ ध्वज गरुड़ वाहन गरुड़। और गरुड़ वहीं कुछ खोज रहा था दाना पानी, तब तक शिव जी आ गए बाहर। गरुड़ ने देख लिया किसको, सिर के इस भगवान शिव के सिर में बैठे हुए सर्प को। और आपको तो पता है ना, गरुड़ और सर्प बाप एक ही है, मां दो हैं, पता है ना, दोनों भाई हैं लेकिन बाप एक है मां दो है, कद्रु और बीनता है, कश्यप ऋषि के कद्रु और बीनता। बीनता का पुत्र गरुड़ बैनतेय, कद्रु का पुत्र सर्प नाग। ये दोनों की बड़ा दुश्मनी है, कद्रु ने ठग लिया था बीनता को, तब से गरुड़ ने ये मान लिया था कि इस सर्प जाति को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब जहां भी सर्प को देखा गरुड़ ने कि झपट मारता था। शिवजी के सिर में बंधा हुआ जो सर्प है उसको देख लिया गरुड़ ने, अरे तेरी ये हिम्मत शिवजी के सिर में बैठा है, वैकुंठ से विष्णु को ढोकर आते समय मुझे कितनी भूख लग रही है, अभी तक खाने को नहीं मिला है, तू वहां बैठा है। गरुड़ ने जब से देखा तो सर्प ने भी देखा कि इसने मुझे देख लिया, अब छोड़ेगा नहीं ये, लेकिन ये मुझे खावे मुझे पकड़े इससे पहले मैं अपने जीवन की रक्षा सेफ्टी करनी चाहिए, कैसे करूं। तुरंत सोचा, भगवान शिव ने यहां चंद्रमा रखी हुई थी, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, सोम, सोम माने अमृत। गरुड़ आवे और सर्प को पकड़े तब तक तो सर्प ने यहां अपना फण मार लिया, किसमें, चंद्रमा में, बस बोले अब मैं अमृत पी लूंगा तो फिर चाट लूंगा तो ये गरुड़ मेरा क्या बिगड़ेगा। जैसे फण मारी वो चंद्रमा से अमृत टपक गया, अमृत का बूंद टपका कहां, भगवान शिव के शरीर में, शरीर से जाकर वही जो हाथी का जो चमड़ा था उसमें जाकर लग गया। अब तो तमाशा देख लो, वहां वो जो अमृत भगवान शिव के शरीर में जो भस्मी लगाया था चिता भस्मी, जिन जिन व्यक्तियों के जलकर वो चिता बना था वो सब जिंदे हो गए, अमृत का स्पर्श हो गया वो तो सब जिंदे हो गए अमृत के कारण, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं था। वो जो अमृत का बूंद जो चमड़ी में पड़ गया हाथी तो जिंदा हो गया, हाँ अमृत पड़ गया ना, अमृत का बूंद पड़ते हाथी जिंदा हो गया, वो तो घास चरने के लिए चला गया, भगवान को पता ही नहीं, शिवजी को पता ही नहीं है क्या हो गए शिवजी, उनका कपड़ा जिंदा हो गया और घास चरने के लिए चला गया तो शिवजी क्या हो गए, दिगंबर हो गए, दिगंबर, उनको तो पता ही नहीं है। भगवान शिव नजदीक आए शिवजी के सामने हाथ जोड़कर, विष्णु के सामने हाथ जोड़कर शिव ने कहा, अरे महाराज आप वैकुंठ से आप आए हैं, हमको ही बुला लेते हम ही आ जाते, बड़ा कष्ट किया आपने, आइए आइए स्वागत करने गए। अरे भोले बाबा ये तो ठीक था, ये सब फॉर्मूले तो ठीक हैं, फॉर्मेलिटी आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कपड़े तो पहन लिया होता, ये क्या हाल बना रखा है दिगंबर है। बोले नहीं नहीं कपड़ा पहन के आया हूं। बोले कहां है कपड़ा, देखा तो दिगंबर, ये कहां गया मेरा कपड़ा, बोले आपका कपड़ा तो वो घास चर रहा है, ये कैसे हो गया। शिव जी कहने लगे ये कैसे हो गया, बोले महाराज आपने जो सिर में चंद्रमा रखा था और सिर में ही जो सर्प बांध रखा था, मेरा बहान गरुड़ ने देखा और गरुड़ से डर के मारे वो सर्प ने वो अमृत में चोंच मारी, तो वहां से जो अमृत गिरा और उस चमड़ी में पड़ा तो वो तो जिंदा हो गया चला गया। केवल वो नहीं, आपने जितने भी मनुष्यों की राख लपेट रखी थी, शरीर में जो विभूति रखा था, जिन जिन व्यक्तियों का जो राख था वो सभी जिंदे हो गए। देखो ना वो फौज, शिव जी तो, अरे ये क्या, ये तो अमृत का कमाल है। बोलो अमृत किसके लिए काम आता है, मरे का, मरे के लिए कि जिंदे के लिए है? उसी का नाम अमृत है जो मरे को भी जिंदा करे। तम तु प्रभो त्रिभुवनैक महेश्वरोपी पर्याप्त शक्तिरपि पूर्ण कृपारणवोपी आक्रंदतोपि करुणं विधि वंचितस्य त्यक्तादरोऽसि मम दर्शन मात्र केऽपि। कारण क्या है, आप इतने समर्थशाली होते हुए भी मुझे आज तक दर्शन भी नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोले जरूर आपने तिरस्कार किया, त्यक्त आदर, मेरे बारे में आपने तिरस्कार कर दी और आपके मन में ही संकल्प नहीं हुआ, तो क्या मैं आपकी क्षमता उतनी जो चिंतामणि है उतनी भी नहीं है ऐसा मानूं? आप में तो कृपा अर्णव है, करुणा वरुणालय है, आप साक्षात चिन्ह मूर्ति हैं, और चिन्ह मूर्ति जड़ चिंतामणि में इतना क्षमता है तो आप तो चैतन्य हैं, तो मेरे ऊपर दया और कृपा आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं चिंतामणि के शरण में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि चिंतामणि संसार के सारे वैभव दे सकता है लेकिन अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता। कल्पवृक्ष सब भोग साधन को दे सकता है, अनादि कर्म बंधन को नष्ट नहीं कर सकता, कामधेनु गाय सारे भोग समृद्धि को दे सकता है लेकिन जन्म मृत्यु के बंधन को उच्छेद नहीं कर सकता। इन सब का उच्छेद तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं। आपके सामने किसी भी हालत में मूल अविद्या टिक नहीं सकती, फिर भी एक ही हृदय अंगुष्ठ मात्र परिमाण का हृदय के अंदर आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूं, और उसी कमरे के अंदर ये अंधकार रह कैसे गया? मूल अविद्या आप कृपा करो। एको बार जवान दवा क्षिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वालोचन गोचरोपि भवति तम कोटि सूर्य प्रभ वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृग भविन मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीयमे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो अनादिकालीन मूल अविद्या है मत्तम अज्ञान रूपी अंधकार, उसका व्यपनीय उसको हटा दो बस, और तभी हटेगा जब आप प्रसन्न हो जाओगे, आप कृपा करोगे। आगे का श्लोक आज सुबह चिमन भाई ने खूब इस श्लोक का प्रचार किया था, इसलिए इस श्लोक की पुनः व्याख्या में मुझे इतना समय लगाना पड़ा। अब आगे शंकराचार्य जी अपने भाव इस तरह व्यक्त करते हैं।
हम स पद्म बनम समिच्छति यथा नीलांबुदम चातक कोक कोक नद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा चेतो वांछति मामकं पशुपते चिन्मार्ग्य मृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्य सौख्य प्रदम।
ये तीन श्लोक में शंकराचार्य जी ने 16 दृष्टांतों के द्वारा अपने भाव शिव जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। यहां कहते हैं हमसह पद्म बनम समिच्छति, राजहंस का, हंस का भोजन ही है कमल, पद्म बनम कमल, हंस कमल खाता है, उसका भोजन ही कमल है, कमल का फूल है, सरोवर में रहता है और वहां उत्पन्न हुए हुए सब कमल का फूल ही उस हंस का प्रिय भोजन है। यथा माने जिस तरह हंस पद्म बनम समिच्छति, हंस भूख लगता है तो पद्म माने कमल के, वन माने समूह को समिच्छति ही चाहता है। नीलांबुदम चातक, दूसरा दृष्टांत, ये पक्षी का ही दृष्टांत है, दूसरा भी चातक पक्षी जमीन के पानी को नहीं पीता, जब उसको प्यास लगता है तब नीलांबुदम नीले नीले बादलों को चाहता है, समझे कि नहीं। नीलांबुदम चातक, चातक पक्षी यथा नीलांबुदम बादलों को चाहता है। कोक कोक नद प्रियम, जिस तरह कोक नाम ये भी पक्षी का है, चकवा चकवा चक्रवा का चकवा बोलते हैं, चातक अलग है चकवा अलग है। चकवा पक्षी का एक नियम है कि चकोरी और चकवा, जब तक सूर्य रहते हैं तब तक साथ में रहते हैं, और उनका नियम है कि सूर्य अस्त हो गए कि दोनों की जोड़ी बिछड़ गई। तो चकुआ माने अपने चकोरी से मिलने के लिए किसको चाहता है, कोक नद प्रिय, कोक कोक नद प्रिय, कोक नद माने कमल, कोक नद भी कमल है और उस कमल का प्रिय सूर्य, क्योंकि रोशनी होगी तभी वो अपने चकोरी को वो प्राप्त करेगा, अंधेरे में तो उसको अकेले रहना है, जब तक सूर्य उदय उदित नहीं होंगे रोशनी नहीं होगी तब तक वो अपने प्रियतमा को प्राप्त नहीं कर सकता वो, हाँ? इसलिए चकोर कोक कोक नद कोक चक्रवाक चकोर पक्षी हमेशा सूर्य का ही चिंतन करता है, रात भर सूर्य का चिंतन करता है कि कब सूर्य उदय कब सूर्य उदित हो कब सूर्य उदित हो, हैं? रात भर वही चिंतन करता है। कोक कोक नद प्रियम, कोक नद प्रिय सूर्य, कोक माने चक्रवाक चकोर, प्रतिदिनम ये देख लो हमेशा रात भर उसी को चिंतन करता है, जब दिन होता है सूर्य उदय हो जाते हैं तो चकोरी उसको मिल जाती है, तो बड़े प्रेम से दिन भर उसके साथ खेलता है रमण करता है घूमता है, फिर शाम को जब अस्त सूर्य अस्त हुए कि बिछोड़े गया तो रात भर वही चिंतन करता रहता है कि सूर्य कब उदित होंगे। कोक नद प्रिय, कमल के जो प्रिय हैं सूर्य उनको चाहता है वो पक्षी। प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस तथा, और चौथा पक्षी है चकोर, ये चार पक्षियों का यहां दृष्टांत दिया। चकोर पक्षी को जब भूख लगता है वह चंद्रमा की ज्योत्सना किरणों को खाता है, उसका भोजन ही है चंद्र किरण, ये उसके अलावा और कुछ नहीं खाता है। खम्मन ढोकला नहीं खाएगा वो, रसपुरी नहीं खाएगा, श्रीखंड वासुदी नहीं खाएगा, क्या खाएगा वो? चंद्रमा से निकलने वाली ज्योत्सना चंद्र किरण, वही उसका भोजन है। तब वो हमेशा चंद्रमा को चाहता है। चंद्रम चकोरह, चकोर पक्षी हमेशा रोज प्रतिदिनम चंद्रम समिच्छति, इसका अनुवाद सब जगह करना। इसी तरह हे शिवा,
चेतो वांछति मामकम पशुपते,
एक पांचवां पक्षी मेरे पास है। पहला पक्षी हंस, दूसरा पक्षी का नाम चातक, तीसरा पक्षी का नाम कोक चक्रवाक, और चौथा पक्षी का नाम चकोर। एक पांचवां पक्षी मेरे पास है। वो जो पांचवां पक्षी जो तुम्हारे पास है वो क्या चाहता है? शिव जी पूछे, तुमने जो पाल रखा है पक्षी पांचवां, वो क्या चाहता है? हैं?
चेतो वांछति मामकं पशुपते चिन्मार्ग मृग्यं विभो,
हे विभो हे पशुपते,
चिन्मार्ग मृग्यं,